जैसा श्रीमती आर्चर ने हंसकर श्रीमती वेलैंड से कहा, किसी युवा दंपति का पहला बड़ा भोज एक घटना होती है। अपना घर बसाने के बाद से न्यूलैंड आर्चर दंपति ने बहुत लोगों को अनौपचारिक रूप से बुलाया था। आर्चर को 3-4 मित्रों के साथ भोजन करना पसंद था और मेयर उन्हें उसी उजली मुस्कान से मिलती थी जो उसकी माँ ने उदाहरण से सिखाई थी। पति को संदेह था कि अकेली छोड़ दी जाए तो वो कभी किसी को बुलाती भी या नहीं, पर परंपरा और शिक्षा ने जिस सांचे में उसे ढाला था उससे उसका असली रूप अलग करने की कोशिश वो कब का छोड़ चुका था। न्यूयॉर्क में ये स्वाभाविक माना जाता था कि आर्थिक रूप से सुखी युवा दंपति बार बार अनौपचारिक आतिथ्य करे, और वेलैंड परिवार की बेटी जो आर्चर परिवार में ब्याही हो उसका ये कर्तव्य दुगना है। पर किराए के रसोइये, उधार लिए दो नौकरों, रोमन पंच, हेंडरसन के गुलाबों और सुनहरी किनारी वाले मेन्यू कार्डों वाला बड़ा भोज बिल्कुल दूसरी बात थी और हल्के मन से नहीं किया जा सकता था। श्रीमती आर्चर के अनुसार सब कुछ रोमन पंच बदल देता था, अपने कारण नहीं बल्कि जो कुछ वो साथ लाता है उसके कारण। रोमन पंच का अर्थ था जंगली बत्तख या कछुआ, दो सूप, एक गरम और एक ठंडी मिठाई, छोटी आस्तीन वाली गहरे गले की पोशाकें और वजनदार मेहमान। पहली बार तीसरे पुरुष में निमंत्रण भेजना हमेशा दिलचस्प काम था और समाज में लंबे समय से सक्रिय लोगों तक के लिए उन्हें ठुकराना कठिन होता। फिर भी ये सचमुच की जीत थी कि वान डेर लुइडेन दंपति ने मे के अनुरोध पर काउंटेस ओलेंस्का के विदाई भोज में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क में रुकना स्वीकार किया। उस दोपहर दोनों माताएं मे के बैठक कक्ष में बैठी थीं। श्रीमती आर्चर टिफनी के सबसे मोटे सुनहरे ब्रिस्टल कागज पर मेन्यू लिख रही थी और श्रीमती वेलैंड ताड़ के पौधों तथा खड़े लैंपों की जमावट देख रही थी। आर्चर जब देर से दफ्तर से आया दोनों वही थी। श्रीमती आर्चर मेज के नाम कार्ड बना रही थी और श्रीमती वेलैंड सोच रही थी कि पियानो और खिड़की के बीच एक और कोना बनाने के लिए बड़ा सुनहरा सोफा आगे खिसकाया जाए। उन्होंने बताया कि मे भोजन कक्ष में है, लंबी मेज के बीच रखे जैकमीनो गुलाबों और मेडन हेयर की सजावट तथा दीपदानों के बीच जालीदार चांदी की टोकरियों में रखे माइयार बॉनबॉन देख रही है। पियानो पर मिस्टर वान डेर लुइडेन द्वारा स्क्वीटर क्लिफ से भेजी ऑर्किड की बड़ी टोकरी रखी थी। इस बड़े अवसर के लिए सब कुछ पूरी तरह तैयार था। श्रीमती आर्चर ने अपनी तेज सुनहरी कलम से हर नाम पर निशान लगाते हुए सूची ध्यान से देखी। हेनरी वान डेर लुइडेन, लुइजा लवेल मिंगोट दंपति, रेगी चिवर्स दंपति, लॉरेंस लेफर्ट्स और गर्ट्रूड, हाँ मे ने उन्हें बुलाकर ठीक किया, सेल्फ्रिज मेरी दंपति, सिलर्टन जैक्सन, वान न्यूलैंड और उसकी पत्नी। समय कितनी जल्दी बीतता है, लगता है कल ही की बात है जब वो तुम्हारा सहबाला था, न्यूलैंड और काउंटेस ओलेंस्का। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। श्रीमती वेलैंड ने दामाद को स्नेह से देखा। कोई इनकार नहीं कर सकता कि मे एलन को बहुत शानदार ढंग से विदा कर रही है। बिल्कुल, श्रीमती आर्चर बोली, मे चाहती है उसकी बहन विदेश में कहे कि हम जंगली नहीं हैं। एलन जरूर सराहेगी, सुना है वो आज सुबह पहुंच रही है, बहुत अच्छा आखिरी प्रभाव पड़ेगा, जहाज से पहले की शाम बड़ी उदास होती है, श्रीमती वेलैंड ने जोड़ा। आर्चर दरवाजे की ओर बढ़ा तो सास ने उसे रोका, अंदर जाकर मेज देख लो और मे को ज्यादा थकने मत देना। पर उसने अनसुना किया और सीढ़ियां चढ़कर पुस्तकालय की ओर भागा। कमरा ऐसा लग रहा था मानो कोई अजनबी चेहरा जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो। उसे लगा कमरे को सजा दिया गया है, मेहमानों के धूम्रपान के लिए तरह तरह की एस्ट्रे और देवदार की डिबिया रखी हुई थीं। खैर, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसने सोचा और ड्रेसिंग रूम में चला गया। काउंटेस ओलेंस्का को न्यूयॉर्क छोड़े 10 दिन हो चुके थे। इस बीच आर्चर को कोई समाचार नहीं मिला सिवाय एक चाबी के जो रेशमी कागज में लिपटी उनकी लिखावट वाले लिफाफे में दफ्तर पहुंची थी। उसकी आखिरी विनती का ये उत्तर विदाई का सामान्य संकेत माना जा सकता था, पर आर्चर ने इसे दूसरी तरह समझने का निश्चय किया। वे अब भी अपनी नियति से लड़ रही थीं और यूरोप जाते हुए पति के पास लौटने का इरादा नहीं रखती थीं, इसलिए पीछा करने में कोई बाधा नहीं थी और उसे विश्वास था कि अटल निर्णय सिद्ध कर सके तो वे उसे दूर नहीं करेंगी। भविष्य के प्रति ये निश्चय ही उसे वर्तमान की भूमिका निभाने देता था। इसी के बल पर वो उन्हें पत्र लिखने और अपनी पीड़ा व निराशा दिखाने से बचा रह सका। उसे लगता था कि दोनों के बीच चल रहे मौन और घातक खेल में उसके हाथ में अब भी एक ऐसा पत्ता है जो सब कुछ तय कर सकता है, और वो प्रतीक्षा करता रहा। फिर भी कठिन घड़ियां आईं। एक तब आई जब उनके जाने के अगले दिन मिस्टर लेटर ब्लेयर ने उसे उस न्यास के ब्योरे देखने बुलाया जिसे श्रीमती मैनसन मिंगोट अपनी नातिन के लिए बनाना चाहती थी। 2 घंटे तक आर्चर ने अपने वरिष्ठ के साथ शर्तें देखी और भीतर ये भाव बढ़ता गया कि उसे केवल रिश्तेदारी के कारण नहीं बुलाया गया और कारण बैठक के अंत में प्रकट होगा। खैर, काउंटेस इनकार नहीं कर सकती कि ये बहुत अच्छी शर्तें हैं, मिस्टर लेटर ब्लेयर ने सारांश बुदबुदाकर निष्कर्ष दिया। मुझे कहना होगा कि कुल मिलाकर उनके साथ बहुत उदारता बरती गई है। कुल मिलाकर, आर्चर ने हल्की व्यंग्य से दोहराया, आपका मतलब पति के उस प्रस्ताव से है कि वो उनका धन लौटा देगा? मिस्टर लेटर ब्लेयर की घनी भौहें जरा उठीं। प्रिय युवक, कानून कानून है, और तुम्हारी पत्नी की चचेरी बहन ने फ्रांसीसी कानून के तहत विवाह किया था। वे जानती थी इसका अर्थ क्या है, जानती भी थी तो उसके बाद जो हुआ।
आर्चर रुक गया। मिस्टर लेटर ब्लेयर ने कलम की मूठ अपनी बड़ी झुर्रीदार नाक पर टिकाई और ऐसे सद्गुणी बूढ़े सज्जन का भाव धरा जो किसी युवक को समझाना चाहता हो कि सद्गुण अज्ञान का पर्याय नहीं। प्रिय युवक, मैं काउंट के दोष का बचाव नहीं करता, पर दूसरी ओर हाथ आग में नहीं डालूंगा, फिर भी शायद उस युवा रक्षक से पत्र व्यवहार रहा हो। मिस्टर लेटर ब्लेयर ने दराज खोली, एक कागज निकाला और आर्चर की ओर सरका दिया। यह पूरी सावधानी से बनाई गई रिपोर्ट है। आर्चर ने न कागज देखा न इशारा काटा, तो वकील ने उदासीनता से कहा, मैं नहीं कहता कि ये निर्णायक है, इससे दूर, पर स्थिति देखते हुए ये सम्मानजनक समाधान सभी को संतोषजनक लगता है। बहुत संतोषजनक, आर्चर ने कागज परे सरकाते हुए सहमति दी।
1-2 दिन बाद जब श्रीमती मैनसन मिंगोट ने बुलवाया और वो उनसे मिलने गया, तो उसका मन और गहरी परीक्षा से गुजरा। उसने बुजुर्ग महिला को उदास और चिड़चिड़ी पाया। जानते हो, उसने मुझे छोड़ दिया, उन्होंने तुरंत कहा, और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना, मत पूछो क्यों, उसने इतने कारण गिनाए कि मैं सब भूल गई। मेरी अपनी राय में उससे ऊब नहीं सही गई। खैर, ऑगस्टा और मेरी बहुएं यही सोचती हैं, और मैं उसे पूरी तरह दोष भी नहीं दे सकती। ओलेंस्की पक्का बदमाश है, पर उसके साथ की जिंदगी 5th Avenue से कहीं ज्यादा चमकीली रही होगी। परिवार ये नहीं मानेगा। जाहिर है, उन्हें लगता है 5th Avenue स्वर्ग है और उसके बगल में रू द ला पे। बेचारी एलेन पति के पास लौटने की नहीं सोचती, अब भी साफ मना करती है, तो वो उस मूर्ख मेडोरा के साथ पेरिस में बसने जा रही है। खैर, पेरिस तो पेरिस है, वहाँ लगभग मुफ्त में गाड़ी रखी जा सकती है। वो चिड़िया की तरह खुश मिजाज थी, मुझे उसकी याद आएगी। 2 बूंदे सूखी बुढ़िया के आंसू उनके फूले गालों पर बहकर छाती में कहीं खो गई। मैं बस एक बात चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई परेशान न करे, मुझे चैन से अपनी लपसी खाने दे, और उन्होंने आर्चर को कुछ उदास नजर से देखकर मुस्कुरा दिया।
उस शाम जब आर्चर घर लौटा, मे ने घोषणा की कि वो अपनी चचेरी बहन के लिए विदाई भोज देगी। जिस रात वे वॉशिंगटन गई थीं, उसके बाद से दोनों के बीच काउंटेस ओलेंस्का का नाम नहीं आया था, और आर्चर ने पत्नी को अचरज से देखा। भोज किस लिए? मे का चेहरा लाल हो गया। पर तुम्हें तो एलन पसंद है, मुझे लगा तुम खुश होगे। तुम्हारा यों कहना बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत। मैं ये करने वाली हूँ न्यूलैंड, उसने शांति से कहा और उठकर मेज की ओर गई। यहाँ निमंत्रण लिखे रखे हैं। माँ ने मदद की, वे भी मानती है कि हमें करना चाहिए। वो जरा असहज होकर रुकी पर मुस्कुराती रही, और आर्चर को अचानक लगा कि वो परिवार का साकार रूप है। ठीक है, चलो, उसने कहा, और पत्नी के हाथ में थमाई मेहमानों की सूची को खोए खोए देखता रहा।
भोज से पहले जब वो बैठक में आया, मैं साफ टाइलों वाली अंगीठी के सामने लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। सारे ऊंचे लैंप जल रहे थे और मिस्टर वान डेर लुइडेन की ऑर्किड आधुनिक चीनी मिट्टी और उभरी चांदी के बीच अलग ही दिख रही थीं। श्रीमती न्यूलैंड आर्चर की बैठक आमतौर पर बड़ी सफल मानी जाती थी। नियमित रूप से बदले जाने वाले प्रीमरोज और सिनेरेरिया से भरा सुनहरा बांस का गमला
उभरी खिड़की तक का रास्ता रोके था, जहां पुराने ढंग के प्रेमी मिलो की वीनस की छोटी कांसे की प्रतिकृति रखते। हल्के ब्रोकेट के सोफे और कुर्सियां मखमल से ढकी छोटी मेजों के चारों ओर कुशलता से सजी थीं, जिन पर चांदी के खिलौने, चीनी मिट्टी के जानवर और भड़कीले फ्रेम भरे थे, और गुलाबी शेड वाले ऊंचे लैंप ताड़ के बीच उष्णकटिबंधीय फूलों की तरह उठे हुए थे। मुझे नहीं लगता ईलिन ने ये कमरा कभी इतना रोशन देखा होगा, मैंने कहा। अंगीठी से जूझते हुए उसका चेहरा लाल था और वो क्षम्य गर्व से कमरे पर नजर डाल रही थी। अंगीठी के पास टिका पीतल का चिमटा इतनी आवाज से गिरा कि पति का उत्तर दब गया और आर्चर उसे उठा पाता उससे पहले वान डेर लुइडेन दंपति की सूचना आ गई।
बाकी मेहमान तुरंत बाद आ गए, क्योंकि सब जानते थे कि वान डेर लुइडेन दंपति समय पर भोजन पसंद करते हैं। कमरा लगभग भर चुका था और आर्चर श्रीमती सेल्फ्रिज मेरी को वर्बेक होवन की चमकीली छोटी तस्वीर भेड़ों का अध्ययन दिखा रहा था। मिस्टर वेलैंड की ओर से मे को क्रिसमस उपहार, तभी उसने काउंटेस ओलेंस्का को अपने पास खड़ा देखा। वे बहुत पीली थीं और इस पीलेपन से उनके काले बाल और घने और भारी लग रहे थे, शायद इसी कारण या गले में पहनी अंबर की कई लड़ियों के कारण। आर्चर को अचानक वो नन्ही एलन मिंगोट याद आ गई जो बच्चों की पार्टियों में नाचती थी जब मेडोरा मैनसन उसे पहली बार न्यूयॉर्क लाई थी। अंबर उनकी रंगत पर नहीं जचता था, शायद पोशाक भी नहीं। उनका चेहरा फीका और लगभग बदसूरत लग रहा था, और उस क्षण जितना उसने उस चेहरे से प्रेम किया उतना कभी नहीं किया था। दोनों के हाथ छू गए और उसे लगा कि वे कह रही हैं, हाँ कल मैं रशिया से रवाना हो रही हूँ। फिर दरवाजे की आवाज आई और थोड़ी देर बाद मे का स्वर, न्यूलैंड, भोजन लग गया है, एलेन को ले चलोगे?
काउंटेस ओलेंस्का ने उसकी बांह पर हाथ रखा और उसने देखा कि उन्होंने दस्ताने नहीं पहने, और उसे वो शाम याद आई जब 23वीं स्ट्रीट के छोटे बैठक कक्ष में उनके पास बैठकर उसने उन्हीं हाथों को देखा था। जो सुंदरता उनके चेहरे से हट गई थी वो मानो उनकी लंबी पीली उंगलियों और जरा धसी पोरों पर खिल आई हो, और उसने मन ही मन कहा, सिर्फ उनके हाथ फिर देखने के लिए भी मुझे उनके पीछे जाना होगा। केवल किसी विदेशी अतिथि के भोज में ही श्रीमती वान डेर लुइडेन मेजबान के बाएं बैठना स्वीकार कर सकती थी। इस विदाई भोज से काउंटेस का विदेशी होना और स्पष्ट रेखांकित हो गया, और श्रीमती वान डेर लुइडेन ने इस व्यवस्था को खुशी से मानकर अपनी स्वीकृति जताई। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, और यदि किए जाएं तो गरिमा से और पूरी तरह किए जाने चाहिए। पुराने न्यूयॉर्क की रीत के अनुसार उनमें से एक यही समारोह था जिसमें कबीला उस स्त्री रिश्तेदार के चारों ओर जुटता है जिसे वो बाहर करने वाला होता है। वेलैंड और मिंगोट परिवार यूरोप जाने को तैयार काउंटेस ओलेंस्का के प्रति अपना अटल स्नेह दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे,
और आर्चर मेज के सिरे पर बैठा ये दृश्य देखता रहा, ये देखकर चकित कि किस तरह उनकी लोकप्रियता लौटाई गई, उनके विरुद्ध शिकायतें शांत की गईं, उनका अतीत सह लिया गया और उनका वर्तमान परिवार की स्वीकृति से चमक उठा। श्रीमती वान डेर लुइडेन उन पर वो मंद कृपा बरसा रही थी जो उनमें कोमलता के सबसे निकट थी, और मे के दाहिने बैठे मिस्टर वान डेर लुइडेन मेज के दूसरे छोर की ओर ऐसे देख रहे थे मानो स्क्वीटर क्लिफ से भेजे गुलनार को सही ठहराना चाहते हों। आर्चर ये दृश्य एक अजीब भारहीनता में देख रहा था, मानो झाड़ फानूस और छत के बीच तैर रहा हो, और सबसे अधिक अचरज उसे अपनी ही भागीदारी पर था। जब उसकी नजर शांत तृप्त चेहरों पर फिरती तो मे की बत्तख खाते हुए सब भोले दिखते लोग उसे मूक षड्यंत्रकारियों का दल लगते, और वो स्वयं तथा दाहिने बैठी पीली स्त्री उस षड्यंत्र का केंद्र, और तभी उस पर बिजली की तरह ये भेद खुला। उनके लिए आर्चर और काउंटेस ओलेंस का प्रेमी थे, विदेशी शब्दावली के चरम अर्थ में प्रेमी।
उसे समझ आया कि महीनों से वो अनगिनत मौन आँखों और कानों के ध्यान का विषय रहा है, और ये भी कि उसे उसकी सह अपराधी से किस तरह अलग किया गया ये जाने बिना भी अब पूरा कबीला उसकी पत्नी के चारों ओर इस मौन मान्यता पर जुट गया है कि किसी को कुछ पता नहीं और किसी ने कुछ कल्पना नहीं की। ये भोज में आर्चर की उस स्वाभाविक इच्छा की अभिव्यक्ति भर था कि वो अपनी सहेली और चचेरी बहन को स्नेह से विदा करे।
ये न्यूयॉर्क का पुराना ढंग था, जीवन को बिना खून बहाए स्वीकार करना। वे बीमारी से अधिक कलंक से डरते थे, साहस से ऊपर शालीनता रखते थे और मानते थे कि हंगामा खड़ा करने से अधिक अशिष्ट कुछ नहीं, सिवाय उनके आचरण के जो हंगामे का कारण बनते हैं। ये विचार सिर में एक के बाद एक दौड़ते रहे और आर्चर को लगा जैसे वो किसी सशस्त्र छावनी के बीच कैदी हो। उसने मेज पर नजर दौड़ाई और फ्लोरिडा की शतावरी खाते हुए बोफर दंपति की चर्चा के लहजे से इन लोगों की निर्ममता भांप ली। ये मुझे दिखाने के लिए है कि मेरे साथ क्या होगा।
उसे लगा कि सीधे कर्म पर संकेत की और लापरवाह वचन पर मौन की श्रेष्ठ था उस पर किसी पारिवारिक कब्र के दरवाजे की तरह बंद हो रही है। वो हंस पड़ा और श्रीमती वान डेर लुडेन ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें ये हास्यास्पद लगता है, उन्होंने बनावटी मुस्कान से कहा। हाँ, बेचारी रेजाइना का न्यूयॉर्क में रुकने का विचार शायद कुछ हास्यास्पद है ही, और आर्चर ने बुदबुदाया। बिल्कुल। उसी क्षण उसने देखा कि काउंटेस के दूसरी ओर बैठा व्यक्ति देर से अपनी दाहिनी महिला से बात कर रहा है, साथ ही देखा कि वान डेर लुडेन और सेल्फ्रिज मेरी के बीच शांति से बैठी मे ने मेज के दूसरे छोर पर तेज नजर डाली। स्पष्ट था कि मेजबान और उसके दाहिने बैठी महिला पूरी शाम चुप नहीं रह सकते। वो काउंटेस की ओर मुड़ा और उनकी पीली मुस्कान ने उसका स्वागत किया। चलो अंत तक निभा ले, मानो वो मुस्कान यही कह रही हो।
यात्रा से थक तो नहीं गई, उसने ऐसे स्वर में पूछा जिसकी सहजता पर उसे खुद अचरज हुआ। उन्होंने कहा कि उल्टे इतनी कम असुविधा वाली यात्रा उन्होंने कम ही की। हाँ, ट्रेन की भयानक गर्मी को छोड़कर, उन्होंने जोड़ा। और आर्चर ने कहा कि जिस देश जा रही हैं वहाँ ऐसी गर्मी नहीं मिलेगी। मुझे कभी, उसने जोर देकर कहा, इतनी ठंड नहीं लगी जितनी एक बार अप्रैल में कैले से पेरिस की ट्रेन में लगी थी। उन्होंने कहा कि इसमें अचरज नहीं, पर आखिर एक कंबल और लिया जा सकता है और हर यात्रा की अपनी तकलीफें होती है। इस पर उसने अचानक कहा कि ये सब उस वरदान के आगे कुछ नहीं कि आदमी सब कुछ छोड़कर दूर जा सके। उनका चेहरा दहक उठा और उसने आवाज ऊंची करके जोड़ा, मैं भी जल्द ही बहुत यात्रा करने वाला हूँ। उनके चेहरे पर एक कंपन दौड़ गया और आर्चर रेगी चिवर्स की ओर झुककर चिल्लाया, सुनो रेगी, दुनिया का चक्कर लगाए तो कैसा, अगले महीने मैं तो कभी भी तैयार हूँ।
इस पर श्रीमती रेगी ने कहा कि रेगी को तब तक नहीं जाने देंगी जब तक ईस्टर पर अंधों के आश्रम के लिए मार्था वॉशिंगटन नृत्य न हो जाए, और पति ने धीरे से कहा कि तब तक उन्हें पोलो मैच के लिए अभ्यास करना होगा। पर मिस्टर सेल्फ्रिज मेरी ने दुनिया का चक्कर सुन लिया था और चूंकि वे एक बार भाप नौका से पृथ्वी घूम चुके थे, वे भूमध्य सागर के बंदरगाहों की कम गहराई पर दिलचस्प बातें बताने लगे। हालांकि जोड़ा कि जिसने एथेंस, स्मरना और कॉन्स्टेंटिनोपल देख लिया, उसके लिए बचता क्या है। श्रीमती मेरी ने कहा कि वे डॉक्टर बेनकॉम की सदा आभारी रहेंगी जिन्होंने बुखार के कारण नेपल्स न जाने का वचन ले लिया था, पर भारत ठीक से देखना हो तो 3 हफ्ते चाहिए। पति ने माना, वे नहीं चाहते थे कि उन्हें छिछला यात्री समझा जाए, और इसी बिंदु पर महिलाएं ऊपर बैठक में चली गईं।
पुस्तकालय में वहां अधिक वजनदार लोग होते हुए भी बात की बागडोर लॉरेंस लेफर्ट्स के हाथ थी। चर्चा हमेशा की तरह बोफर दंपति पर आ गई और मिस्टर वान डेर लुइडन तथा मिस्टर सेल्फ्रिज मेरी भी अपने लिए मौन रूप से आरक्षित सम्मानित कुर्सियों में जमे युवक की तीखी भर्त्सना सुनने को एक पल रुक गए। लेफर्ट्स ने पहले से भी अधिक उन भावों का प्रदर्शन किया जो ईसाई पौरुष और गृहस्थी की पवित्रता को ऊंचा उठाते हैं। क्रोध ने उसे पैनी वाक्पटुता दी और स्पष्ट था कि दूसरे भी उसके उपदेश पर चलते तो समाज कभी इतना कमजोर न होता कि बोफर जैसे विदेशी नवधनिक को स्वीकारता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने वान डेर लुइडन या लैनिंग के बजाय डलास परिवार की लड़की से विवाह किया। लेफर्ट्स ने आवेश में पूछा कि श्रीमती लेम्यूअल स्ट्रदर्स जैसे लोग उसके पीछे घरों में न घुसते तो बोफर को डलास जैसे परिवार में रिश्ता कैसे मिलता। यदि समाज साधारण औरतों के लिए द्वार खोल दे तो हानि बहुत नहीं होगी, यद्यपि लाभ संदिग्ध रहेगा, पर जैसे ही वो अस्पष्ट मूल और धुंधली संपत्ति वाले पुरुषों को सहने लगेगा, उसने चेताया, पूरा ढहना दूर नहीं, इसी चाल से चले। लेफर्ट्स गर्जा, पूल के सिलवाए कपड़ों वाले और अब तक बिना पत्थर खाए युवा पैगंबर की तरह
तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चे ठगों के घर के निमंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और बोफर की नाजायज संतानों से ब्याह कर रहे हैं।
अरे भाई जरा संभलो, रेगी चीवर्स और युवा न्यूलैंड ने विरोध किया। सेल्फ्रिज मेरी सचमुच घबराए दिखे और मिस्टर वांडेर लुइडेन के संवेदनशील चेहरे पर पीड़ा और घृणा उभर आई। क्या सचमुच उसके नाजायज बच्चे हैं? मिस्टर सिलर्टन जैक्सन ने कान खड़े करके पूछा। लेफर्ट्स ने हंसी से बात टालनी चाही, पर मिस्टर सिलर्टन जैक्सन ने आर्चर के कान में फुसफुसाया। अजीब है ये लोग जो हमेशा दुनिया सुधारना चाहते हैं। जिनके रसोई ये सबसे खराब होते हैं वही बाहर खाने पर हमेशा जहर दिए जाने की शिकायत करते हैं, पर इस बार अपने लॉरेंस के पास इस जोश की वजह है। इस बार सुना है कोई टाइपिस्ट महिला है। बातचीत आर्चर के पास से ऐसे बहती रही जैसे निरर्थक नदी जो रुकना नहीं जानती। आसपास के चेहरों पर उसे रुचि, मनोरंजन, यहाँ तक कि उल्लास दिखा। उसने युवाओं की हंसी सुनी और वांडेर लुइडेन तथा मेरी की उस मदीरा की तारीफ सुनी जो उसने परोसवाई थी, और इन सबके बीच उसे धुंधले रूप से एक सामान्य भल मनसाहत महसूस हुई, मानो उसके पहरेदार उसकी कैद को नरम करने की कोशिश कर रहे हों, और इस समझ ने स्वतंत्रता का उसका संकल्प और भड़का दिया। बैठक में जहां वे जल्दी ही महिलाओं से मिलने ऊपर गए,
उसकी नजर मे की विजयी दृष्टि से मिली और उसने उसमें ये निश्चय पढ़ा कि सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से निपट गया। वो काउंटेस ओलेंस्का के पास से उठी और तुरंत श्रीमती वांडेर लुइडेन ने उन्हें सुनहरे सोफे पर बुला लिया। श्रीमती सेल्फ्रिज मेरी कमरा पार कर उनसे मिलने आई और आर्चर समझ गया कि यहाँ भी पुनर्वास और मिटाने का षड्यंत्र चल रहा है। उसकी छोटी दुनिया को थामे रखने वाला मौन ताना बाना ये स्पष्ट करने पर तुला था कि उसने कभी काउंटेस ओलेंस्का के आचरण पर और कभी आर्चर के गृह सुख की पूर्णता पर संदेह नहीं किया। ये सब भले और निर्मम लोग एक दूसरे के सामने दृढ़ता से ये दिखावा कर रहे थे कि उन्होंने इसके उलट कुछ न सुना, न शक किया, न संभव तक माना। और इस बारीक आपसी छद्म के बीच आर्चर ने फिर समझा कि न्यूयॉर्क उसे काउंटेस ओलेंस्का का प्रेमी मानता है। उसने पत्नी की आंखों में विजय की चमक देखी और पहली बार जाना कि वो भी यही विश्वास रखती है।
इस खोज ने उसके भीतर शैतानी हंसी जगा दी, जबकि वो श्रीमती रेगी चिवर्स और युवा श्रीमती न्यूलैंड से मार्था वॉशिंगटन नृत्य की बात करने की कोशिश कर रहा था। और शाम यूं ही बहती रही, उस नदी की तरह जो रुकना नहीं जानती। आखिर उसने काउंटेस ओलेंस्का को विदा लेने के लिए उठते देखा। वो जान गया कि वे बस जाने वाली है और याद करने की कोशिश की कि भोज में उसने उनसे क्या कहा था, पर एक शब्द भी याद न आया। वे मे की ओर बढ़ी और बाकी लोग उनके चारों ओर घेरा बना गए। दोनों युवतियों ने हाथ मिलाए और मे ने झुककर अपनी चचेरी बहन के गाल पर चुंबन दिया। निस्संदेह हमारी मेजबान दोनों में अधिक सुंदर है, आर्चर ने रेगी चिवर्स को युवा श्रीमती न्यूलैंड से फुसफुसाते सुना, और उसे बोफर का वो उपहास याद आया कि मे की सुंदरता प्रभावहीन है।
कुछ ही पल बाद वो ड्योढ़ी में था, काउंटेस ओलेंस्का के कंधों पर लबादा डाल रहा था।
मन की उलझन में भी वो इस संकल्प पर दृढ़ था कि ऐसा कुछ न कहेगा जो उन्हें चौंकाए या असहज करे। ये विश्वास होने पर कि अब कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती, वो सब कुछ स्वाभाविक बहने दे रहा था। पर उनके पीछे ड्योढ़ी में निकलते हुए उसे उनकी गाड़ी के दरवाजे पर अकेले एक क्षण की तीव्र लालसा हुई। आपकी गाड़ी आ गई, आर्चर ने पूछा। उसी क्षण श्रीमती वांडेर लुइडेन ने अपनी फर में सुरुचि से लिपटते हुए उत्तर दिया, हम अपनी प्यारी एलन को घर छोड़ेंगे। आर्चर का दिल बैठ गया और काउंटेस ने लबादा और पंखा एक हाथ में थामकर दूसरा उसकी ओर बढ़ाया। नमस्ते, उन्होंने कहा। नमस्ते, पर हम जल्द पेरिस में मिलेंगे, आर्चर ने उत्तर दिया। उसे लगा मानो उसने ये चिल्लाकर कहा हो। ओह, उन्होंने धीमे से कहा, काश आप और मैं आ सकें। मिस्टर वांडेर लुइडेन उन्हें बांह देने पास आए और आर्चर श्रीमती वांडेर लुइडेन की ओर मुड़ा। एक पल के लिए बड़ी लांडो गाड़ी के लहराते अंधेरे में उसे एक पीला अंडाकार चेहरा और चमकती आंखें दिखीं और वे ओझल हो गई।
सीढ़ियां चढ़ते हुए आर्चर की भेंट नीचे उतरते लॉरेंस लेफर्ट्स और उनकी पत्नी से हुई। लेफर्ट्स ने गर्ट्रूड को आगे जाने दिया और उसकी आस्तीन पकड़ ली।
सुनो भाई, कल रात कह देना कि तुमने क्लब में मेरे साथ खाना खाया।
ठीक, हजार शुक्रिया भाई, शुभ रात्रि। क्या तुम्हें नहीं लगता सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से हुआ?
मे ने पुस्तकालय की देहरी से पूछा। आर्चर चौंक उठा। आखिरी गाड़ी के जाते ही वो पुस्तकालय में ऊपर आकर खुद को बंद कर चुका था, इस उम्मीद में कि नीचे रुकी पत्नी सीधे अपने कमरे में चली जाएगी। पर मैं वहीं खड़ी थी, पीली और साफ थकी हुई, फिर भी थकान से परे एक शक्ति बिखेरती। भीतर आकर बात कर सकती हूँ, उसने पूछा। बेशक, पर तुम बहुत थकी होगी। नहीं, थकी नहीं हूँ, बस थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। ठीक है, आर्चर ने कहा और उसकी कुर्सी अंगीठ की पास खिसका दी। वो बैठ गई, वो भी फिर बैठ गया, पर बहुत देर तक कोई कुछ न बोला। आखिर आर्चर ने अचानक कहा, अगर तुम थकी नहीं हो और बात करना चाहती हो तो मुझे कुछ कहना है। उस रात भी कहना चाहा था। मैंने तेजी से उसका चेहरा देखा। हाँ प्रिया, अपने बारे में कुछ? अपने बारे में? तुम कहती हो तुम थकी नहीं। मैं थका हूँ, बहुत बुरी तरह थका।
वो तुरंत चिंता से उसकी ओर मुड़ी।
ओह, मैं यही सोच रही थी न्यूलैंड, तुमने बहुत ज्यादा काम किया शायद। खैर, मुझे बदलाव चाहिए। बदलाव? क्या वकालत छोड़ दोगे?
नहीं, वो नहीं, मैं अभी दूर जाना चाहता हूँ, सब कुछ से दूर, बहुत दूर।
वो रुका, वो उदासीनता से कहना चाहता था जैसे कोई इतना थका हो कि जिस बदलाव की चाह है उसका स्वागत भी न कर सके। पर सफल न हुआ, वो जो भी करता उसकी लालसा कांपती ही रही। सब कुछ से दूर, उसने दोहराया।
बहुत दूर? जैसे कहाँ? उसने पूछा। ओह, पता नहीं, भारत या जापान। मैं उठ खड़ी हुई और वो सिर झुकाए ठुड्डी हाथों पर टिकाए बैठा रहा। उसे अपने चारों ओर उसकी गर्म सुगंधित उपस्थिति महसूस हुई।
इतनी दूर? पर मुझे डर है तुम नहीं जा सकोगे प्रिय, उसने कांपती आवाज में कहा, जब तक मुझे साथ न ले चलो। और जब वो चुप रहा, वो इतने साफ और समान स्वर में बोलती रही कि हर अक्षर उसके मस्तिष्क पर छोटे हथौड़े सा पड़ा। यानी अगर डॉक्टर इजाज़ दे, पर मुझे डर है वे नहीं देंगे, क्योंकि न्यूलैंड आज सुबह से मुझे उस बात का निश्चय है जिसकी मैं इतनी आशा और कामना करती रही।
आर्चर ने उसे बीमार सी दृष्टि से देखा और वो गुलाब की तरह खिलती हुई उसकी ओर ढल गई, चेहरा उसके घुटनों में छिपा लिया।
ओह प्रिय, उसने कहा उसे बाहों में भरकर ठंडे हाथ से उसके बाल सहलाते हुए।
एक लंबा मौन छाया जिसमें उसके भीतर के दैत्यों की ऊंची उपहास भरी हंसी गूंजी। कुछ देर बाद मैं उसकी बाहों से छूटकर खड़ी हो गई। तुमने ध्यान नहीं दिया?
मैं नहीं, यानी आशा तो थी ही।
दोनों एक पल एक दूसरे को देखते रहे और फिर चुप हो गए। फिर उसकी नजर से बचते हुए उसने अचानक पूछा, किसी और को बताया?
बस माँ को और तुम्हारी माँ को।
वो रुकी, फिर लाल होते हुए जल्दी से जोड़ा, अरे हाँ, और एलेन को। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दोपहर हमने बहुत देर बात की, वे कितनी स्नेही थी।
अच्छा, आर्चर ने कहा, उसका दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि पत्नी उसे ध्यान से देख रही है।
तुम्हें बुरा लगा कि मैंने पहले उन्हें बताया न्यूलैंड?
बुरा? भला क्यों लगेगा?
उसने कहते हुए आखिरी बार खुद को संभालने की कोशिश की। पर वो तो 15 दिन पहले की बात है, तुमने नहीं कहा था कि आज तक निश्चय नहीं था? मे का चेहरा और लाल हुआ, पर उसने नजर नहीं हटाई।
नहीं, तब निश्चय नहीं था, पर मैंने उनसे कहा था कि है, और देखो मैं सही थी, वो विजय से नम नीली आंखों के साथ बोल उठी।